ہر طرف محنت کی مختلف شکلیں چل رہی ہیں اور ہر محنت کرنے والا اپنی محنت کے ذریعے سے کامیاب ہونا چاہتا ہے. ساتھی جو کھڑے ہیں ان کی منت خوش آمد کر کے ان کو بٹھا لیں, وہی جگہ بنا لیں, جہاں کھڑے ہیں ان کو وہی بٹھا لیں, جو بیٹھے ہوئے ساتھی ہیں وہ ان کی منت کر لیں, خوش آمد کر لیں. محنت, ہر شخص محنت میں لگا ہوا ہے. چھوٹے بچے جو ظاہر میں ہمیں کھیل کود میں نظر آ رہے ہیں, اگر ان سے پوچھا جائے کیا کر رہے ہو, کام کر رہا ہوں, وہ بھی اپنے آپ کو, اپنے کھیل کو اپنی محنت سمجھتے ہیں. گھر میں عورتیں گھر کے کام کاج میں لگی ہوئی ہیں, وہ اس کو محنت سمجھ رہی ہیں. ہم یہ محنت کر رہے ہیں, اس محنت کے نتیجے میں روٹی سالن بن رہا ہے, بچے کھا رہے ہیں, کپڑے صاف ہو رہے ہیں, گھر کی صفائی ہو رہی ہے, اور باہر نکل کر مردوں اور عورتوں کی یہ بھیڑ مختلف شعبۂ زندگی میں لگ کر اپنی صلاحیتوں کو, اپنی استعداد اور اپنی طاقت کو صرف کر رہے ہیں. تاجر تجارت کے اندر, زمیندار زمین کے اندر, کھیتی باڑی کے اندر, ملازم پیشہ اپنے ملازمت میں, عہدے منصب والے اپنے عہدے اور منصب میں, سیاست والے اپنے سیاست میں, حکومت والے اپنی حکومت میں, سب محنت کی دوڑ میں ہیں اور اپنی اپنی محنت کے ذریعے سے اس شعبۂ زندگی کے آخر کو چھونا چاہتے ہیں. تاجر بہت بڑا تاجر بننا چاہتا ہے, زمیندار مربوں کا مالک بننا چاہتا ہے, عہدے اور منصب والے اپنے عہدے اور منصب کے آخری عہدے تک پہنچنا چاہتا ہے, طالب علم اپنے علمی کارناموں میں اول نمبر پہ آنا چاہتا ہے, سیاستدان اپنی سیاست کے ذریعے سے حکومت پانا چاہتے ہیں, حکمران اپنی حکومت کے ذریعے سے دائمی حکومت چاہتے ہیں. سب دوڑ میں ہیں اور اپنی اپنی محنت میں کامیابی کو یقینی سمجھ رہے ہیں. ابھی دو دن رات لگا رہے ہیں, حالانکہ دنیا میں محنت کی جتنی بھی شکلیں بکھری ہوئی ہیں, ان تمام محنت کی شکلوں میں کامیابی کا ملنا یقینی نہیں ہے. تاریخ عالم کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے, انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کے واقعات کو پڑھا اور سنا جائے تو یہ انسان جان جائے گا کہ پچھلی قومیں ان تمام محنت کی شکلوں میں, جس میں آج ہم لگ کر کامیاب ہونا چاہتے ہیں, پچھلی قومیں, پچھلی پہلی امتیں ان محنت کی شکلوں میں لگ کر کیسے ناکام ہوئی, کیسے برباد ہوئے. بھائی جس نے جانا ہو چلے جاؤ, تم لوگ ایسے کیوں آ کر بیٹھے ہو آگے, جس نے جانا اٹھ کے چلے جاؤ, شاباش. اور بھی جس نے جانا چلے جاؤ, راستہ دے دو بھائی اس کو جانے والوں, چلو بھائی اٹھو, جاؤ جاؤ, تمہیں تو بیٹھنا نہیں ہے, جاؤ. एक आदमी उठता है, दस को अपने पीछे उठाता है। अल्लाह रसूल की बात नहीं सुननी है, जाओ। क्यों आए थे यहाँ? आगे आके ऐसे बैठ गए, बीच बीच में से उठे जा रहे हैं आदमियों। पीछे वाले तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो सामने बैठे हुए हो वो तो बैठे, जो बैठे हुए हैं वो देख रहे हैं। एक उठता है, दूसरा उठता है, तीसरा उठता है, अजीब मंजर कायम कर दिया। अब जब मैं कह रहा हूँ जाओ, तो अब जा नहीं रहे। भाई जिस जिसने जाना है वो चले जाओ, अभी चले जाओ, चलो इसको रास्ता दे दो। अच्छा इसने नहीं जाना, आगे होना। ऐसा है मैं चला जाता हूँ, ठीक है मैं चला जाता हूँ, आप लोग बैठे रहो, गपशप लगाओ, खाओ पियो, जो मर्जी। मैंने अभी दरखास्त की आप लोगों से, जो खड़े हैं उनकी मिन्नत सनाजत कर लो, खुशामद कर लो, पाँव पकड़ लो। अब आपके जो बैठे हुए हैं वो भी देख रहे हैं, वो चुप करके बैठे हुए। अजीब मंजर होता है ना, एक आदमी बात कर रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मुंह फेर के जा रहे हैं, कैसा अजीब लगता है। आप मुझसे बात करें, मैं मुंह दूसरी तरफ कर लूं, आप क्या कहेंगे, कैसा बदअखलाक है। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ आप लोगों से, एक बात समझाना चाह रहा हूँ। आप लोग आए हैं यहाँ पे इस मकसद के लिए आए हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हैं, क्या कुछ खेल तमाशा तो नहीं हो रहा ना। अल्लाह रसूल की बात हो रही है। ये जो रंगीन सुतून है ना, इस सुतून से लेकर इस सुतून तक जिस जिसने जाना है वो अभी चला जाए, ताकि मैं बात शुरू करूं। मैं दो मिनट बैठता हूँ, ये सामने वाले, पीछे वाले तो चलो ठीक है, पीछे आदमी हरकत कर, सामने जो नजर आ रहे हैं वो अजीब 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 लग रहा था। मैं बैठा हुआ हूँ, जिस जिसने जाना वो चला जाए, उसके बाद बात शुरू कर ली जाएगा। चल अल्लाह अल्लाह खुश रहे। ये मर्दों वाली बात की ना, पता चला मर्द बैठे हैं, चले बैठ जाओ माशा। अब अगर कोई उठा तो वो जो साथ वाले चार पांच है ना, वो पकड़ ले उसे, जाने नहीं देना। मौलवी साहब ने जब कहा था जाने के लिए तो गया क्यों नहीं तू, अब नहीं जाने। अल्लाह आपको बहुत 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 अजर दे और बदला दे, दुनिया में भी दे आखिरत में भी। हम दुआई कर सकते हैं आपके, ईमान वाले की ये पहचान होती है। ईमान वाला जब किसी चीज का हजम करता है तो फिर उसको पूरा करता है। मैं अर्ज कर रहा था कि मेहनत की शक्लें दुनिया में बनी हुई है और उन मेहनत की शक्लों में लोग कामयाब होना चाह रहे हैं। हम यहां जो जमा हुए हैं, हम भी एक मेहनत के लिए जमा हुए। हमारे और सारी दुनिया की मेहनतों में फर्क है कि हमारी जिस मेहनत के लिए हम यहां आए हैं, ये मेहनत हमारी खुद साख्ता नहीं है, हमारी बनाई हुई मेहनत नहीं है। ये वो मेहनत है जिस मेहनत के साथ अल्लाह जल्ले जलालहू अम्मा नवालहू ने हर कबीले में, हर कौम में, हर जमाने में, हर इलाके में, हर बस्ती में अपने खासुल खास चुने हुए, पुरगजीदा छाटे हुए बंदों को, जिनको अंबिया अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात कहा जाता है, उनको भेजा था इस मेहनत के साथ, जिस मेहनत के लिए हम यहां जमा। और वो मेहनतें जिनका मैंने जिक्र किया, तिजारत की मेहनत, ज़राअत की मेहनत, मुलाजमत की मेहनत, ओहदे मनसिब की मेहनत, सियासत की मेहनत, अदालत की मेहनत, हुकूमत की मेहनत, उन सब मेहनतों का नतीजा यकीनी नहीं है, इम्कानी है, मुमकिन है। मुमकिन है ताजिर तिजारत करे उसको कुछ नफा मिल जाए, मुमकिन है जमींदार जमींदारा करे और उसको अनाज मिल जाए, और ये भी मुमकिन है ताजिर को खसारा हो जाए, सारा माल ही डूब जाए। जमींदारा जमींदारा करे, आसमानी आफत आए और सारी फसल तबाह हो जाए। मुमकिन है सियासतदान सियासत करे और उसे हुकूमत मिल जाए, लेकिन अगर हर सियासतदान की नतीजे में हुकूमत का मिलना यकीनी होता तो मुल्क में लाखों वजीर आजम होते। सब कहते हमें हुकूमत मिलो, मिलता एक आध को है। और जो कामयाबी मिलती है, जो नतीजा मिलता भी है आरजी, वो वो इम्कानी नतीजा अगर मिल भी गया तो उसका नफा मौत पे जाकर खत्म हो जाता। हम यहां जिस मेहनत के लिए जमा है, ये वो आलीशान मेहनत है जिसका एक लाजमी और यकीनी नतीजा है, इस मेहनत के करने वालों के दिलों में अल्लाह जल्ले जलालू हिदायत का नूर उतारते हैं। इस मेहनत का यकीनी नतीजा है, लाजमी नतीजा है कि मेहनत के बदले में दिल में हिदायत का नूर आएगा, हिदायत का नूर आएगा। और जब दिल में हिदायत का नूर आ जाए तो उसे अल्लाह की पहचान हो जाती है, उसे अल्लाह की पहचान होती है, फिर अल्लाह के हुक्म को मानना उसके लिए आसान हो जाता है, नबी के तरीके पर चलना उसके लिए सहल हो जाता है। आज चूंकि हमारी सलाहियत, हमारी कुव्वत, हमारी इस्तेदाद, हमारी ताकत, हमारी समझ, इल्म, अकल, अमल और हमारी फहम, हमारे ताल्लुकात, हमारी मोहब्बतें इस मेहनत पर नहीं लगी, इसलिए हिदायत के नूर से हम आरी और खाली होकर चल रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि अल्लाह का एक अमर आ जाता है, अल्लाह का एक हुक्म आ जाता है और उसके मुकाबले में मेरे बदन की कोई हाजत आ जाती है तो मैं अल्लाह के हुक्म को मुअख्खर कर देता हूं, अपने बदन की हाजत को पहले पूरा करने लगता। दुनियावी एतबार से हमें पहचान है कि ये वजीर है, ये मेंबर है, ये पुलिस अफसर है, ये फौजी है, इसकी बात मानेंगे तो ये होगा, इसकी बात नहीं मानेंगे तो ये नुकसान होगा। लेकिन अल्लाह की वो पहचान कि अगर मैं अल्लाह की बात को मानूंगा तो मुझे क्या नफा मिलेगा और मैं अल्लाह की बात को नहीं मानूंगा तो मुझे क्या नुकसान होगा। लेकिन इस मेहनत में लगने पे अल्लाह जल्ले जलालू वो नूर दिल में उतारते हैं, जिस नूर में, जिस रोशनी में उसे अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाती है, अल्लाह की आजमत उसके दिल में आ जाती है, अल्लाह की किबरियाई और बुजुर्गी और बड़ाई उसके अंदर उतर आती है, अल्लाह के तहत उसका ताल्लुक बनता चला जाता है, अल्लाह की मोहब्बत की हलावत से वो आशना हो जाता है, अल्लाह के कुर्ब के लापतनाही दर्जात में ये तरक्की करने लगता है। और जितना जितना अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, अल्लाह का मुकर्रब बनता चला जाता है, उतनी ही अल्लाह के अहकाम को पूरा करना इसको सब चीजों से ज्यादा अजीज हो जाता है। हुजाबी थे ना अब्दुल्लाह इब्ने हुजाफा रजी अल्लाह ताला, जब उन्हें पकड़ा रूमी बादशाह ने और कत्ल करना चाहा, खौलते पानी में डालना चाहा, क्या कहा? ओहो, एक जान अल्लाह के नाम पर चली जाएगी, अल्लाह अल्लाह अस्मतों वाले अल्लाह, अर्श अजीम के मालिक अल्लाह, रब करीम अल्लाह, रब कायनात अल्लाह, एक जान। काश काश मेरे बदन पे जितने बाल हैं उतनी जाने होती और हर जान में अल्लाह के नाम पर कुर्बान करता चला जाता। जब अल्लाह से ताल्लुक होता है बंदे का तो फिर अंदर का जज्बा ये बनता है। मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्गों, हम सब जो यहां जमा हुए हैं वो उस मेहनत के लिए जमा हुए। पहले अंबिया अलैहिमुस्सलावातु तस्लीमात एक खास इलाके, खास जमाने, खास जबान वालों की तरफ भेजे जाते थे, एक खास मुद्दत के लिए भेजे जाते थे, और उस वक्त के लोगों के दिलों में, उनके सीनों में, उनके जीवों में जिन चीजों से काम के बनने का यकीन बसा हुआ था, नबी आकर उस शक्ल के मुकाबले में आवाज लगाते थे। इलाके वालों का यकीन बना हुआ है कि हुकूमत हो तो फिर काम बनेगा, अल्लाह ने नबी को भेजा कि जाति बतलाओ, हुकूमत से काम नहीं बनता। लोगों के कबीले, इलाके के लोगों का यकीन था माल ज्यादा हो तो काम बनेगा, अल्लाह ने नबी को भेजा कि जाकर इनको समझाओ कि माल के ज्यादा होने से काम नहीं बनता, माल के कम होने से काम नहीं बिगड़ता। जिनका यकीन था कि कसरत से काम बनेगा, कसरत से काम बनेगा, नबी ने जाकर क्या कहा कि कसरत से काम नहीं बनता, अल्लाह की मदद से काम बनता है। जिनका यकीन था कि फौज और हथियार पास हो तो काम बनेगा, नबी आकर आवाज लगाते कि फौज और हथियार से काम नहीं बनेगा, अल्लाह को अपने साथ लो अगर काम बनाना चाहते हो। जिनका यकीन था कि ताकत, बदनी ताकत और कुव्वत से काम बनेगा, नबी ने आकर आवाज लगाई कि बदनी ताकत और कुव्वत से काम नहीं बनता, अल्लाह साथ हो तो काम बनता। जिनका यकीन था खेतों और बागात में बढ़ो, डैम बनाओ, बागात में फल और फूल लगे, खेतियां बढ़े तो काम बनेगा, नबी ने आवाज लगाई कि अल्लाह साथ होंगे तो काम बनेगा, इन चीजों से काम नहीं बनेगा। जिनका यकीन ये था कि सनत और हिरफत में हम बढ़ेंगे, कारखाने लगाएंगे, इंडस्ट्रियां लगाएंगे, इलाकों के इलाके इंडस्ट्रियल इलाका गिरदानेंगे, जैसे आज हो रहा, तो हम बड़े तरक्की करेंगे, हमारा काम बनेगा, हम दुनिया में सुरखरू हो जाएंगे, नबी ने आकर आवाज लगाई कि तुम्हारे कारखाने, तुम्हारी फैक्ट्रियां, तुम्हारी ये सनतें, तुम्हारी ये हरफतें तुम्हें काम नहीं बना देंगी, अल्लाह साथ होंगे तो तुम्हारा काम बनेगा। इसलिए हर नबी एक आवाज लेकर आए, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलावातुत्तस्लीमात की पहली आवाज, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलावातुत्तस्लीमात की पहली आवाज ला इलाहा इल्लल्लाह, बशमूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये ला इलाहा इल्लल्लाह की निदा, ये पुकार, ये आवाज, इसकी दावत तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलावातुत्तस्लीमात की मुश्तरक दावत है, मुश्तरक आवाज। सबसे पहले क्या है, ला इला, इला किसे कहते हैं? अरबी जबान में इला उस जात को कहते हैं जिससे सारे काम बने, जिस जात से, जिस हस्ती से सारे काम बने, उसको अरबी में इला कहते हैं। खाना मिले, पीना मिले, कपड़े मिले, नौकरी मिले, चाकरी मिले, छोकरी मिले, बच्चे मिले, बीवी मिले, सब जिससे मिले, ओहदे मनसब मिले, मालो दौलत मिले, राहत और आराम मिले, मुसीबत दूर हो, परेशानी खत्म हो, हर काम जिस जात से हो उसको अरबी में इला कहते हैं। लोगों ने अपने जियो में मुख्तलिफ इला बना रखे थे, कोई कहता था नमरूद से काम बन जाएगा, कोई कहता था फिरौन से बन जाएगा, कोई कहता था हमान से बन जाएगा, कोई कहता था फौज से बन जाएगा, कोई कहता था बागात से बन जाएगा, कसरत से बन जाएगा, मुख्तलिफ इला, जिस जिस से काम बनना था नबी आकर कहते थे ला इला, जिससे तू काम बनता समझ रहा इससे नहीं होता, ये इला नहीं है, फिर कौन है, इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह से काम बनता। इसलिए तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलावातुत्तस्लीमात की जो मेहनत है, उस मेहनत का मैदान कुलूबे इंसानी है, इंसानों का दिल है, मेहनत की जगह इंसानी दिल है, ये दिल मस्कने रब्बानी है, अल्लाह के नूर के उतरने की जगह इंसानी कल्ब है, दिल है, इंसान के दिल में अल्लाह का नूर आता है, कायनात में नहीं सुबह सकता, मोमिन के दिल में सुबह सकता है, मोमिन का दिल, ईमान वाले का दिल। इसलिए अल्लाह, हजरत मुजद्दद अफसानी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह अपने एक मक्तूब में लिखते हैं कि जिस दिल में अल्लाह का गैर आ गया वो दिल नजिस नापाक हो गया। अल्लाह का गैर, ये सब अल्लाह का गैर है, ये जमीन गैर, आसमान गैर, ये ओहदे मनसब गैर, ये वजीर वजरा गैर, ये सदर सुदर गैर, ये पार्टी ओहदा गैर, ये तिजारत गैर, ये जरात गैर, ये माँ बाप गैर, भाई बहन गैर, औलाद गैर, बीवी बच्चे गैर, दोस्त अहबाब गैर, ये सब गैर है, दुश्मन भी गैर, सब गैर। जिस गैर से होना दिल में आ गया कि हो ये खौफनाक दुश्मन आ रहा, इससे हो जाएगा, ये दिल में आ गया, ये दिल नजिस नापाक हो। कोई दोस्त काम नहीं दे सकता, कोई दुश्मन काम बिगाड़ नहीं सकता। नबी सबसे पहले ला इलाह की चोट मार कर दिलों से अल्लाह के गैर की निजासत को खरच खरच के साफ कर। जब ये दिल साफ हो गया तो फिर पाक अल्लाह, ताहिर और तैयब अल्लाह उस दिल में आते हैं। अल्लाह पाक है, अल्लाह ताहिर है, अल्लाह तैयब है। वो मुकद्दस हस्ती के अनवारात दिल में उतरते हैं, इसलिए पहले ला इलाह की चोट मारते हैं, फिर इल्लल्लाह दिल में आता है। सारे इलाह से होना अपने दिल से निकाले, जिन जिन से काम का बनना समझ रहे हैं उसको दिल से साफ करें, फिर अल्लाह से होना दिल में आएगा। इसलिए अंबियाए सादिकीन अलैहिमुस्सलावातु तस्लीमात एक खास खास शक्ल के मुकाबले में आवाज लगाते थे, लेकिन इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन रहमतुल्लिल आलमीन शफीउल मुदनिबीन सरवरे कौनैन ताजदारे दो आलम मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ले जलालहु अम्मा नवालहु ने अंबियाए साबिकीन की तरह किसी खास इलाके कौम कबीले की तरफ नहीं भेजा, बल्कि अक्वाम आलम की तरफ भेजा, और किसी खास जमाने के लिए नहीं भेजा, बल्कि क्यामत तक आने वाले हर इंस और जिन के लिए नबी और रसूल बनाकर भेजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक मखसूस शक्ल के मुकाबले में नहीं भेजा, जिन जिन शक्लों के मुकाबले में पहले एक एक नबी आते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजमूई तौर पर उन तमाम शक्लों के मुकाबले में भेजा। कसरत वालों के मुकाबले में भी आवाज लगाने के लिए, मुल्क माल वालों के भी मुकाबले में, ओहदे और मनसब वालों के मुकाबले में, तिजारत और ज़राअत वालों के मुकाबले में, सनत और हिरफत वालों के मुकाबले में, ताकत और कुव्वत वालों के मुकाबले में, इल्म और समझ अकल रखने वालों के मुकाबले में, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से ये आवाज लगवाई, या अय्युहन्नास या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ऐ दुनिया जहां के इंसानों, बादशाहों वजीरों अमीरों गरीबों, ऐ दुनिया के मर्दों दुनिया की औरतों दुनिया के ओहदे मनसब रखने वालों, ऐ दुनिया के फौज और हथियारों पर इतराने वालों, ऐ दुनिया के निजाम पर अपने आप में गुरूर पैदा करने वालों, पहाड़ों पे ठिकाना करने वालों, खुश्की में और तरी में घर बसाने वालों, जजीरों में क्याम करने वालों, ऐ दुनिया जहां के इंसानों, ऐ अरबियों और अजमियों, ऐ अमरीका वालों और यूरोप वालों, एशिया वालों और अफ्रीका वालों, जंगलों में रहने वालों, ऐ चीन के रहने वालों या रूस के रहने वालों, दुनिया के किसी खित्ते के किसी कोने में कोई घर बनाकर बेघर बनाकर रहने वाले इंसानों, अल्लाह को इला तस्लीम कर लो, तुम कामयाब हो जाओ। अल्लाह को इला तस्लीम करो, ताकत का सर चश्मा अल्लाह को मानो। ये कुफर के बोल हैं जो आज हमारी जबानों पे आ गए कि ताकत का सर चश्मा आवाम है, ये अल्लाह को नाराज करने वाले अल्फाज हैं, अल्लाह के गैज और गजब को उतारने वाले अल्फाज हैं कि अल्लाह को अपने मुकाबले में किसी को लाना ये गवारा नहीं। अल्लाह अल्लाह है, उसी की ताकत है, वो कादिरुल मुक्तदिर है, हर चीज पे उसे कुदरत है, वल मुहयी वल मुमीत, जिंदगी उसके कब्जे कुदरत में है, जिसे चाहे जिलाए, मौत उसके कब्जे कुदरत में है, जिसे चाहे मारे, वल हाफिज़ुल हफीज, हिफाजत करने वाले अल्लाह हैं। सारी कायनात सारी मखलूकात मिलकर किसी एक को नुकसान पहुंचाना चाहे और अल्लाह उसकी हिफाजत करना चाहे, कायनात के सारे सारी मखलूकात मिलकर उसका बाल भी बेकार नहीं कर सकते। वो समी वल बसीर खूब देख रहे हैं, हमारे हर हरकत को देख रहे, हमारे हर बोल को सुन रहे हैं। वल मुआइद वल मुबिल, इज्जत और जिल्लत सब उसके कब्जे में है, जिसे चाहे जिल्लत के गड़े से निकाले इज्जत की चोटी में पहुंचाए और जिसे चाहे इज्जत की बुलंदी से उठाए और जिल्लत के गड़े में डाल। बकौल हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना जमशेद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के, दिन को थे वजीर आजम, रात को हो गए असीर आजम। दिन में सब वजीर आजम समझ रहे थे और रातों रात सबसे बड़ा मुजरिम कैदी बन गया, असीर आजम हो गए। असीर कहते हैं कैदी, सबसे बड़ा कैदी बन गया, जो कल तक सबसे बड़ा वजीर कहलाता था आज सबसे बड़ा मुजरिम और कैदी बन गया। अल्लाह कर दे, अल्लाह कर दे। वहदहु ला शरीक ला वला मिस्ल ला वला निद ला वला वालिद ला वला वलद ला वला साहिब ला, वकील यक्ता है, यक्ता है, कोई उसका साथी नहीं, कोई उसका शरीक नहीं, कोई उस जैसा नहीं, कोई उसका मिसल नहीं, कोई उसका बाप नहीं, कोई उसका बेटा नहीं, कोई उसकी बीवी नहीं। वो अल्लाह अकबर सबसे बड़े हैं, अकबर उल अकबर सारे बड़ों के बड़े वो अल्लाह है। उस अल्लाह को तस्लीम करो। हर नबी की पहली दावत ये है, जिस जिस से होना समझ रहे हो उससे निकलो, अल्लाह से होना समझो। एक अल्लाह करते हैं और करने में किसी के मोहताज नहीं। वो समर्थ बेनियाज है जो सब बिन जीता है और उस बिन कोई नहीं जीता, वो है मेरे अल्लाह। अल्लाह उस अल्लाह की तरफ से बुजुर्गी जिन पर खत्म, किबरियाई जिन पर खत्म, लहू मकालीद समावात वला, जमीन आसमान की खजाने की सारी कुंजियां उसके कब्जे कुदरत में है। लिल्लाहि मा फिस समावात वमा फिल अर्ज, जमीन आसमान की हर चीज उसके तहत है, वही तसर्रुफ करने वाले हैं, वो गालिब है हर चीज पे। वल अलीमुल खबीर, हर चीज के जर्रे जर्रे का उसे इल्म है, हर चीज के बारे में उसे खबर है। माफी सुदूर को खूब जानता है, जो हमारे सीनों में राज छुपे हुए हैं, जो ख्यालात हैं उसे भी वो अल्लाह जानता है। अल्लाह हु अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह ही अल्लाह है, बाकी सब धोखा है। हमारे हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह अब्दुल्लाह साहब फरमाते थे कि मौलाना रियाज साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अल्लाह के सिवा सब धोखा है। फरमाया अल्लाह की अजमत, जब मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह कहते थे तो महसूस होता था अल्लाह की अजमत छलक रही है, इतनी अल्लाह की अजमत दिल में थी। इसलिए अल्लाह से ताल्लुक बनाना, अल्लाह की मोहब्बत में अपने आप को, अपने आप को अल्लाह की मोहब्बत में कुर्बान करते चले जाना, फिर अल्लाह की मोहब्बत की हलावत से, हलावत की लज्जत महसूस होगी और उस लज्जत से आशनाई होगी और फिर अल्लाह की मोहब्बत की हलावत को ये महसूस करेगा, फिर दुनिया के सारे मजे अल्लाह के नाम की हलावत में इसे हेज नजर आएगा। अल्लाह मेरे अल्लाह, इस अल्लाह को अपने दिल में उतारना होगा, इस अल्लाह को अपने दिल में सुनाना होगा। अल्लाह ही है, हमारे आयशा फरमाते थे कोई माने न माने अल्लाह है, कोई माने न माने अल्लाह ही करते हैं, अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह करने वाले हैं। और अल्लाह की अजमत हमारे दिलों में उतर जाए कि मेरे अल्लाह मेरे साथ हैं, मेरा काम बनेगा, यकीनन बनेगा, दुनिया में भी बनेगा,
موت کے وقت بھی بنے گا, حشر کے میدان میں بھی بنے گا, السرات پر بھی میرا کام بنے گا, کیونکہ میرے اللہ میرے ساتھ, میرے اللہ میرے ساتھ. اور پھر جنت میں تو بنتا ہی رہے گا, ہمیشہ ہمیشہ میرے اللہ میرا کام بناتے ہی رہے. میرے بھائی اور بزرگوں, اس اللہ کو پانے کے لیے اللہ کو بولنا پڑتا ہے. اتنا بولے اتنا بولے اللہ سے ہونے کو اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو, اتنا بولے اتنا سنے. اور بقول مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے, یہ تنہائی میں بیٹھ کر پھر سوچے, روزانہ تنہائی میں کچھ وقت نکالے اور سوچے کہ جو اللہ 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 ہونا, اللہ سے ہونا, اللہ کے غیر سے نہ ہونا, سن رہا تھا بول رہا تھا, میرا دل کیا کہتا. جب اکیلے بیٹھے پھر سوچے, پھر پتا چلے گا ابھی کہاں پہنچے. جیسے ایک بات ہے, بھائی صاحب نے فرمایا کہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ, مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ, وہ فرمایا کرتے تھے کہ بے دھیانی سے بھی اللہ کا نام لیا جائے تو نفع سے خالی نہیں. یہ ہمارے مزے کی بات, دھیان تو ہمارا پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹک رہا ہوتا. گنگوئی رحمت اللہ فرمایا کہ اگر بے دھیانی سے بھی اللہ کا نام لے لیا جائے تو وہ بھی نفع سے خالی نہیں ہوتا. ہم جس محنت کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں, اس محنت کی سب سے پہلی کڑی یہ ہے, سب سے پہلا بول یہ ہے کہ اپنے دل میں اللہ سے ہونے کو اتارا جائے. اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا, سارا غیر جمع ہو جائے, سارے حشرات الارض جمع ہو جائیں, سارے مخلوقات جمع ہو جائیں, ساری دنیا کے جراثیم جمع ہو جائیں, ساری دنیا کی انسانی قوتیں جمع ہو جائیں, ساری دنیا کے جناتی قوتیں جمع ہو جائیں, ساری دنیا کی آسمانی قوتیں جمع ہو جائیں, اگر اللہ نہ چاہے کوئی نقصان پہنچانا تو ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. اور اگر اللہ ہی نے ارادہ کر لیا, اللہ ہی نے فیصلہ کر لیا, صفایا کر دو ان کا, یہ ملک صفائی ہستی سے مٹا دو, یہ شہر برباد کر دو, اب ساری کائنات کے تمام وسائل اور اسباب جمع کر لیے جائیں اس بربادی سے بچانے کے لیے, اس بربادی سے بچانے کے لیے, تو سارے اسباب اور وسائل دھرے کے دھرے رہ جائیں. اللہ کا ارادہ ہو چکا ہے, اس لیے اللہ کو ساتھ لے لے. بگڑی بنے گی, اللہ کو ساتھ نہیں لیا تو بنی ہوئی بھی بگڑ جائے گی. سب سے رشتہ توڑ بابا, رب سے رشتہ جوڑ بابا. کیا خیال تیار ہے اللہ کو ساتھ لینے کے لیے؟ بڑی کڑوی کسیلی سننی پڑے گی. دوست کھینچیں گے, گھر والے کھینچیں گے, پاگل ہو گیا ہے, کوئی کہیں گے دیوانہ ہو گیا ہے, باقیوں کو نہیں دین کی سمجھ ہے, تو ہی ایک دین سمجھتا ہے. کوئی علماء کے پاس لے کر جائیں گے, مفتیوں کے پاس لے کر جائیں گے, قرآن حدیث سناؤ جی اسے, بتاؤ ماں باپ کے حقوق بتلاؤ. ماں باپ کے بھی حق ہیں, بیوی بچوں کے بھی حق ہیں. ہمارے حاجی عبدالرحاب صاحب کے رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب سخت ناراض ہوتے تھے جب وہ تبلیغ میں لگے. تو ایک دن بعد میں تو خیر وہ خود ہی تبلیغ میں لگ گئے کچھ سالوں بعد, لیکن ان کو راجپوت تھے, ان کو غصہ آتا تھا جب کہیں جاتے تھے تو لوگ تعارف کراتے تھے کہ جی بھائی عبدالرحاب کے والد ہیں. راجپوت کو غصہ آتا تھا بیٹے کے نام سے میرا تعارف کر, وہ کہتے تھے عبدالرحاب میرا بیٹا ہے, یہ کہو نا کہ ان کا بیٹا ہے وہ, یہ کیوں کہتے عبدالرحاب کے والد ہیں؟ تو وہ پہلے آیا, میں پہلے آیا, اس کا نام پہلے لے لیا.
ऐसा फरमाते हैं कि मैं निजामुद्दीन में था, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह और इसी उसमें था, वालिद साहब वो वालिद साहब नाराज है क्या करूं, ये भी नहीं छोड़ सकता, वालिद साहब की नाराजगी भी तो नहीं हो रही, तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह बयान में फरमाने लगे कि क्यामत के दिन अल्लाह ताला एक आदमी को खड़ा करेंगे और उसके जितने हुकूक वाले हैं ना उन सबको भी बुलाएंगे, माँ को बुलाएंगे, बाप को बुलाएंगे, बीवी को बुलाएंगे, बच्चों को बुलाएंगे, आजकल के ये जो बच्चे बैठे हुए ना ये भी बापों को ताने देते, कई मुझे मिले जो बेचारा बाप तबलीग में फिर रहा तो ये बच्चे क्या कहते हैं बाप को, हमारे लिए किया क्या तुमने हमारे लिए क्या किया, तेरे लिए क्या करेंगे, तो कर अब खुद, बाले होने के बाद तो तू अब जिम्मे ही नहीं है, बाप खिला रहा तुझे मुफ्त में, बाप को कहता है कि मेरे लिए क्या किया तुम, बाले होने तक बाप ने खिला पिला दिया बस जिम्मेदारी खत्म, चुप भी अब जा बात। तो हजरत ने फरमाया कि सबसे पहले अल्लाह ताला माँ को बुलाए और माँ को बुलाकर कहेंगे ये तेरा बच्चा, इसने तेरा हक ये 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 हक नहीं अदा किया, अब बता तुझे हक चाहिए या वो देख सामने जन्नत, वो जन्नत चाहिए, आई साहब ने इसी तरह फरमाया कि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यूं उंगली से इशारा किया कि वो देख सामने जन्नत, वो जन्नत चाहिए ये हक चाहिए, माँ जब जन्नत देखेगी तो कहेगी जन्नत चाहिए, अल्लाह ताला कहेंगे अच्छा फिर हुकूक माफ सारे, वो कहेगी माफ, कहेंगे चल जा जन्नत में जा, फिर बाप को बुलाएंगे कि तेरे बेटे ने ये 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 हक फोड़ा है, अब बतला कि तुझे हक चाहिए या वो देख जन्नत, जन्नत चाहिए, बाप कहेगा जन्नत चाहिए, उन्हें कहा हक माफ, उन्हें कहा माफ, उन्हें कहा जाओ, फिर बीवी को बुलाएंगे, फिर बच्चों को बुलाएंगे, इसी तरह एक एक करके बुलाते जाएंगे और फिर सारे बेहुकूक माफ करवा कर सबको जन्नत दे देकर राजी कर दिया और उसको भी कहा जा दो। आई साहब कहते जब मैंने ये बात सुनी हजरत से बस फिर मैंने कहा अब तो हो गया काम, अब तो काम हो गया, बस फिर दिन रात न घर देखा न दर देखा न रिश्ते नाते कुछ नहीं, बस इस काम को अपना काम बना। कुरान की तफसीर है कुरतबी, उसको मैं देख रहा था तो वो उसमें ये हदीस नजर आ गई, ऐसा फरमाते थे मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ने फरमाया रसूल ने फरमाया यूं कह के बयान नहीं करते थे, बस जो चीज है उसको बताते थे, नमाज पढ़ोगे इतना फायदा होगा, सुभान अल्लाह कहोगे इतना फायदा होगा, यूं नहीं कहते थे कि हुजूर ने फरमाया कि सुभान अल्लाह कहोगे तो इतना फायदा होगा, जो फायदे की चीज है सिर्फ वो उतना बतला देते। तो ये जो हजरत ने फरमाया कि क्यामत के दिन अल्लाह इस तरह बुलाएंगे और हुकूक माफ करवाएंगे जन्नत देंगे, तो ये कुर्तुबी में मौजूद है, मैंने वो लाके हाई साहब को दिखलाया, मैंने कहा ये तो इसमें भी मौजूद है इसी तरह का, कि अल्लाह ताला क्यामत के दिन वो शख्स जो अल्लाह के नाम की सरबुलंदी के लिए एलाए कलिमतुल्लाह के लिए अल्लाह के नाम को ऊंचा करने के लिए अपनी जान और माल को लगा देता है, न दिन देखता है न रात देखता है, न खाना न आराम, न घर न दर, अल्लाह उसके हुकूक वालों को हुकूक के बदले में आला से आला नेमतें देकर सारे हुकूक माफ करवाएंगे और सबको जन्नत में इकट्ठा कर, वो तो सखी है, दाता है, उसके खजाने में क्या कमी। मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्गो, असल अल्लाह है, अल्लाह के सिवा बाकी कुछ, लेकिन अल्लाह तक कोई पहुंच नहीं सकता, अल्लाह को पा नहीं सकता जब तक के दरबारे मोहम्मदी से नहीं गुजरेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह बगैर अल्लाह तक पहुंच नहीं सकते, जो सरकार के रंग में अपने आप को रंग लेगा, जितना ज्यादा सरकार के रंग में रंगा होगा वो उतना ही अल्लाह के कुर्ब में बढ़ता चला जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर किसी और रास्ते से अगर अल्लाह तक पहुंचना चाहे तो पहुंच नहीं सकता, अल्लाह तक पहुंचने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
خلاف پیغمبر کثیر گزیر کہ ہر کس ببند نخاطر پیغمبر علیہ السلام کے طریقے راستے کو چھوڑ کر حضور کی زندگی کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے کسی اور طریقے سے کسی اور کو پکڑ کر اگر منزل تک اللہ تک پہنچنا چاہے تو ہرگز منزل تک نہیں پہنچے. منزل اللہ ہے. یہ ساری محنت یہ ساری بھاگ و دوڑ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہے, اللہ کو پانے کے لیے ہے, اللہ سے تعلق بنانے کے لیے ہے. جس کے اللہ ہو گئے زمین اس کی ہے, آسمان اس کے ہیں, چاند سورج ستارے اس کے ہیں, کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا ہے. ایک دفعہ اللہ سے تعلق بنا کر تو دیکھ. یہاں اپنے کام بنانے کے لیے ہزاروں کے پیچھے پھر رہے ہیں, ہزاروں کو چھوڑ کر ایک اللہ کے پیچھے ہو جائے کہ مجھے اللہ سے تعلق بنانا ہے. اور اللہ سے تعلق بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہوگی تو یہ پہنچے گا منزل کو. حضور کی زندگی چھوڑ کر منزل تک نہیں پہنچتا. اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا, صرف اپنی بندگی کے لیے. کیا مطلب؟ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بندہ کسے کہتے؟ بندہ اسے کہتے ہیں جس کی اپنی مرضی نہیں چلا کرتی. ہم زبان سے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں, کہتے ہیں نا, مرضی اپنی چلاتے ہیں. تو پھر اللہ کے بندے کہاں ہوئے؟ بخال آئی صاحب کے یہ جھوٹ بولتا ہے. جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ, جب ہم زبان سے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ, اور اللہ کے غیر کے پیچھے بھاگتا ہے, فرشتے کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے, تو جھوٹ بولتا ہے. ادھر کہتا ہے لا الہ الا اللہ اور بھاگتا اللہ کے غیر کی طرف, جا رہا اللہ کے غیر کی طرف, کہہ رہا زبان سے لا الہ الا اللہ, اندر کچھ باہر کچھ, زبان پہ کچھ دل میں کچھ. جب ہم کہتے ہیں اللہ کا بندہ تو بندے کی تو مرضی کوئی ہوتی نہیں. جو غلام ہوتا ہے, بندہ ہوتا ہے, غلام, اس کی تو مرضی نہیں چلا کرتی. جو اس کا آقا کہتا ہے اس کی مرضی چلتی. اب آقا پانچ دفعہ بلا رہا دن میں, یہ کہہ رہا میری مرضی, میں دکان پہ بیٹھا رہوں گا. آقا بلا رہا فجر کی نماز میں, یہ کہتا میں رضائی میں گھسا رہوں گا. تو یہ بندہ کیسا ہوا؟ بندہ تو رات کے 2 بجے اس کا آقا اٹھائے وہ انکار نہیں کرے گا. جو بندہ ہے, جو عام ملازم ہے, تنخواہ دار, یہ بندے نہیں ہے, یہ غلام نہیں ہے, وہ نہیں انکار کرتے. جو ملازم ہے, اگر ملازم کو رات کے 3 بجے ہم اٹھائیں ڈرائیور کو کہ بھائی جانا ہے اٹھ جاؤ, تو وہ انکار کرتا ہے کہ نہیں جاؤں گا میں. حالانکہ وہ بندہ نہیں ہے, بندہ تو اس سے آگے ہے. بندے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا, غلام کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے پاس جو کچھ ہے اس کا مالک, اس کا اللہ, اس کا آقا بن جاتا ہے. ہم دھوکے میں ہیں, ہم کہتے ہیں جیب میں پیسے ہیں, یہ میرے ہیں, تیرے کیسے ہیں, تو تو بندہ ہے. کہتے ہیں یہ آنکھ میری ہے, جس کو چاہے دے دو دیکھ لوں. کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تم تو بندے ہو, اللہ کا بندہ ہے. ہم کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں. اگر بندے ہو تو یہ آنکھ تو تیری نہیں ہے, تو اس آنکھ سے جو چاہے دے کے, یہ کیسے کر سکتا؟ بندہ وہ کام کرتا ہے جو اس کا آقا کہتا ہے. آقا جتنا استعمال کے لیے کہے گا اتنا استعمال کرے گا. آقا جو کھانے کے لیے دے گا وہ کھائے گا. آقا جو پینے کے لیے دے گا وہ پیے گا. آقا جہاں سلائے گا وہاں سوئے گا. آقا جو پہنائے گا وہ پہنے گا. ہم سب اللہ کے بندے ہیں, بندے ہیں یا نہیں ہے, لیکن کام الٹا کرتے. آقا اللہ کو مانتے ہیں لیکن کام ایسا کرتے جیسے میں خود آقا ہوں. جو میری مرضی ہوگی وہ کروں گا, جس کا مال چاہے دباؤں گا, جس کا مال چاہے ہڑپ کر لوں گا, جیسے بولنا چاہوں بولوں گا, جسے دیکھنا چاہوں اسے دیکھوں گا, جو بات سننا چاہوں وہ سنوں گا, آقا چاہے یا نہ چاہے. ہاں, اگر اس آنکھ سے وہ دیکھیں گے جو آقا چاہتا ہے, اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے, حج عمرے کا ثواب پائیں گے. اپنی بیوی کو پیار سے, حیا کی अपने अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए देखेंगे, इस पर भी अजर सवाब मिलेगा। जो हाथ दूसरे के माल खींचने के लिए है, यह हाथ इसको दोजख में ले जाएगी, और जो हाथ अपनी बीवी के मुंह में लुप्पा डालने के लिए है, यह हाथ इसे जन्नत में ले जाएगी। हमारे कुछ इलाके के भाई हैं, उनको बड़ा ये लगता है कि भाई बीवी के मुंह में भी लुप्पा डालेंगे, ये कैसे हो सकता है? तो बात बीवी के मुंह में लुप्पा डालेंगे। हमारे बाज इलाके ऐसे हैं, एक जगह का नाम नहीं लेता, एक इलाके के एक मौली साहब साल में चल रहे थे, तो हम राइवेट के, मैं, मौलाना अब्दुलरहमान साहब हमारे उस्ताद, मौलाना खुर्शीद साहब, हम सब एक ही जमात में, उसका साल का आखिर था, तो उसने अपना किस्सा सुनाया। कहने लगा, मौली साहब मैं जब नया नया तबलीग में लगा, मैं तो मौलवी बन गया, एक बड़े मशहूर मदरसे से मौलवी बन गया। मैं मौलवी बन के तबलीग में लगा, तीन तीन दिन जब लगा कर मैं घर गया, वो जमात में लोगों ने कहा कि भाई सलाम करो, घर में जाते हुए भी सलाम करो। तो जो ही मैंने घर में दरवाजे पे सलाम किया, तो मेरी बीवी तो भाग गई, पागल हो गया। वो अंदर भागी, वो देखो ये मौलवी पागल हो गया, सलाम करता है, बीवी को सलाम करता है। खैर अब खत्म हो गया, ये पुरानी बात है, अब तो सलाम करते हैं नहीं करते हैं। पता है जिस इलाके में ये होता था पहले, वहां के लोग बैठे हुए हैं, बड़ी उम्र वालों को पता है, नौजवानों को नहीं पता। लेकिन ये वाला है कि बीवी के मुंह में अगर लुकमा डालेगा तो इसमें भी अजर मिलेगा, मौजूद है किताबों, अपने हाथ से लुकमा डालो, यही हाथ दूसरे के लुकमे को छीनने के लिए, तो इस पर पकड़ होगी, ये हाथ दोजख में जाएगा। जो कदम उठेंगे अपनी बेवा बहन की मदद के लिए, अपने पड़ोसी की मदद के लिए, ये कदम उसे जन्नत में ले जाएगी, और जो कदम उठे दूसरे के घर पे कब्जा करने के लिए, ये कदम उसे दोजख में ले जाएगी। ये अब्दियत, अल्लाह ने हमें अब्द बनाया है, अल्लाह के हम बंदे हैं, हमारी मर्जी कोई नहीं, अल्लाह ने ये चीजें दी हैं, ये आंख अल्लाह ने दी है, ये जेब में पैसे अल्लाह के दिए हुए, ये जान अल्लाह की दी हुई, ये हमारे पास ताकत कुव्वत सलाहियत, ये सब अल्लाह के, ये कान अल्लाह के, ये जबान अल्लाह की दी हुई, अल्लाह ने बनाया दिया, हमें इस्तेमाल की इजाजत दी, और मेहरबानी ये की कि अल्लाह ने खास बंदों को, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी तरफ भेजकर ये बतला दिया कि मेरी दी हुई चीज मालिक मैं हूं, तुम मालिक नहीं हो, तुम्हें इस्तेमाल की इजाजत है, लेकिन वहां इस्तेमाल करना जहां इस्तेमाल करने से अल्लाह राजी होते हैं, वहां इस्तेमाल न करना जहां इस्तेमाल करने से अल्लाह नाराज होते हैं। सच बोलना अल्लाह खुश होंगे, असद को युंजी, ये सच्चाई तुम्हें नजात देगी, झूठ मत बोलना, ये झूठ तुम्हें हलाक कर देगी, अल्लाह नाराज होंगे। सदका करना, तुम्हारा इस हाथ से सदका करना तेरे माल को ज्यादा करेगा। सूद मत लेना, रिश्वत मत लेना, तेरा माल घटता चला जाएगा। नबी अल्लाह क्या चाहते हैं वो बतलाने के लिए आते हैं, सिर्फ बतलाते नहीं, अमलन दिखलाते हैं कि देखो अल्लाह को जाना है, अल्लाह को अब तक पहुंचना है, अल्लाह का बंदा बन के रहना है, अल्लाह ने जिस मकसद के लिए पैदा किया है, अब्दियत के लिए किया है, बंदा बनकर रहने के लिए, बंदगी के लिए 24 घंटे की जिंदगी इस तरह गुजरे। तमाम इंसान हजरत आदम अला नबी आला अलैहि सलातो सलाम से लेकर क्यामत तक आने वाला हर फर्द बशर उसके जिम्मे है कि वो अपने आप को इंसान होने के नाते अल्लाह का गुलाम, अल्लाह का बंदा समझकर रहे, अल्लाह जो चाहते हैं वो करे, अल्लाह जो नहीं चाहते हैं उससे अपने आप को रोके। कहां से पता चलेगा? दरबारे मोहम्मदी से पता चलेगा। फिर अल्लाह क्या चाहते हैं? अल्लाह ये चाहते हैं कि दिन में कुछ वक्त ऐसा खास मुकर्रर कर दिया कि ये खास वक्त है, वैसे तो 24 घंटे तुम गुलाम हो, बंदे हो, अब्द हो, लेकिन दिन में कुछ औकात है, 5 वक्त ऐसा है कि इन 5 वक्तों में जब मेरी पुकार हो जाए तो सबको छोड़ छाड़ कर मेरे घर में आ जाओ। ये सारी मसाजिद बैतुल्लाह की बेटियां हैं, सब अल्लाह का घर है। दिन में 5 दफा बुलाया जा रहा, बंदो आ जाओ मेरे घर में, बंदियों झुक जाओ अल्लाह के सामने। हर मर्द और औरत अल्लाह के बंदे और बंदी है, 24 घंटे अल्लाह की गुलामी में जिंदगी गुजारने के लिए है। और फिर अल्लाह क्या चाहते हैं कि जब तुम मेरे बंदे हो तो मेरे इल्म से तुम्हें आशनाई होनी चाहिए। मेरा इल्म क्या है कि तुम्हारी 24 घंटे में मैं क्या चाहता हूं, इसका तुम्हें इल्म होना चाहिए। और जब आका मैं हूं, दाता मैं हूं, खालिक मैं हूं, मालिक मैं हूं, देता मैं हूं, तो 24 घंटे में मुझे याद भी तो किया करो, मुझे याद भी तो किया करो। कोई वक्त मुकर्रर कर लो जिक्र के लिए, अल्लाह को याद कर रहे, अरे दाता अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरे आका अल्लाह, मेरे मौला अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह की किताब पढ़ पढ़कर अल्लाह को याद कर रहे हैं, किताबुल्लाह कुरान करीम। फिर अल्लाह अपने बंदों से क्या चाहते हैं, अल्लाह अपने बंदों से ये भी चाहते हैं कि मेरे ये बंदे आपस में ऐसे रहे जैसे एक मां के सगे बेटे हो, एक मां एक बाप की औलाद जैसे रहे। इन रब्ब रब्बुन वाहिद व इन अल अबा अबुन वाहिद, रब भी एक है हमारे अल्लाह, हर बाप भी हम सब के एक है आदम अलैहिस्सलाम, हम सब उनकी औलाद। इसीलिए कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक के साथ मुत्तसिफ होना, हुजूर बीवियों के साथ कैसे रहे, हुजूर गुलामों के साथ कैसे रहे, हुजूर पड़ोसियों के साथ कैसे रहे, हुजूर बूढ़ों के साथ कैसे रहे, हुजूर बच्चों के साथ कैसे रहे, यहां तक के दुश्मनों के साथ कैसे रहे, ये भी बतला है। और तो और जानवरों के साथ कैसे रहना, ये भी बतलाया, इतना वजन ला दो इतना मत ला दो। अब तो बेजान सवारियां हैं, जानदार सवारियां जब होती थी, खच्चर गधे ऊंट बैल घोड़े, तो उस पर ज्यादा सामान थे तो वो बेचारे सवारी जो है वो भी कुछ चीं चां करती थी। अब तो बेजान सवारियां हैं, उस पे सवारी पे वैसे लिखा होता है कि ये सवारी में 200 250 वजन रख सकते हैं, लेकिन 500 वजन ला देते हैं। वो हमारे थे रायगढ़ से, तो वो गन्ने वाले जो है ले जा रहे थे, तो गन्ना ट्रक के ऊपर जितना ट्रक की ऊंचाई थी उससे और ऊंचाई तक गन्ना लादा हुआ था। मैंने कहा उस बेचारी ट्रक ने तो चिंता नहीं करना, हालांकि वो ट्रक भी अल्लाह की मखलूक है, बेजान मखलूक है लेकर है तो मखलूक। जब उसके बनाने वाले ने लिखा है कि इस पे इतना वजन डालना इतना नहीं डालना, उन्होंने उससे दुगना उससे ऊपर वजन डाला हुआ गन्ने लेके जा रहे फैक्ट्री में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उस्वाए हसना है, बेहतरीन नमूना है इंसान के इंसान बनने। इंसान इंसान कैसे बने, इंसान होने के नाते उसका सबसे पहला तकाजा है कि अब्द बनकर रहे, गुलाम बंदा बन के रहे। और बंदा 24 घंटे अपने आका को देखे, मेरे आका मेरे मौला मेरे अल्लाह मुझसे क्या चाहते हैं, और उस चाहत को मेरे नबी ने मेरे महबूब ने कैसे पूरा करके दिखलाया है, मैं वैसे चाहत पूरा करूं। इसी के लिए नमाज है, इसी के लिए इल्म है, इसी के लिए जिक्र है, इसी के लिए इकराम मुस्लिम है। और जब मैं बंदा हूं अल्लाह का तो मुझे किसी और से क्या गरज, मुझे तो गरज सिर्फ यह है कि मेरे अल्लाह मेरे अमल से खुश हो जाए। जब मैं किसी और का गुलाम नहीं हूं, किसी और से मेरा ताल्लुक नहीं, मैं बंदा अल्लाह का, आका मेरे अल्लाह, मैं गुलाम अल्लाह का, मौला मेरे अल्लाह, तो मैं तो वो काम इसलिए करूंगा कि मेरे आका मेरे मौला मुझसे खुश हो जाए राजी हो जाए। इसी को इखलास कहा जाए। ये है वो हम सब पर जिम्मेदारी कि हम इंसान हैं, हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اس آواز لگانے میں، اس پکار میں کہ یہ انسان انسان بنے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھے، غلام سمجھے، بندگی پہ آئے، عبدیت پر آئے، اس کی دعوت دی، قیامت تک سارے انسان اس چیز میں برابر کے شریک ہیں۔ لیکن ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نا خاتم الانبیاء لا نبی بعدی، میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، نبوت کا سلسلہ ختم۔ اللہ جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور والی محنت کے لیے آپ کی پوری امت کا انتخاب کیا۔ کیا فرمایا؟ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اللہ کہلوا رہے ہیں اپنے حبیب سے، آپ کہہ دیں کہ یہ ہے میرا راستہ۔ کیا ہے راستہ؟ میرا کام یہ کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، پورے یقین کے ساتھ بلا رہا ہوں، سوجھ بوجھ کے ساتھ بلا رہا ہوں کہ میں کامیابی کی طرف بلا رہا، ناکامی کی طرف نہیں، حق کی طرف بلا رہا، باطل کی طرف نہیں۔ آنا ومن اتبعنی، اے عام نبی، میرا بھی یہ کام، اور جو مجھ پر ایمان لایا، جس نے مجھے اپنا نبی رسول تسلیم کیا، اس کا بھی یہی کام ہے۔ تمام امتوں کے ذمے ایک کام، اپنے آپ کو بندہ بنا کر زندگی گزار کے، اللہ کو راضی کر کے، آقا مولا کو تسلیم کر کے، خوش کر کے چلے جانا۔ امت محمدیہ پر دو کام، آقا کو بھی راضی کرنا ہے، عبدیت والی زندگی بھی گزارنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے نمائندگی والی زندگی بھی گزارنی ہے۔ حضور کی محنت کو اپنی محنت بنانا۔ اللہ نے قرآن میں حضور کی زبان اثر سے یہ کہلوا کر اس امت کے ہر مرد، ہر عورت، ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر بچہ، ہر بچی، ہر پڑھا لکھا، ہر ان پڑھ، ہر عالم، ہر غیر عالم، ہر حاکم، ہر محکوم، ہر زمیندار، ہر کاشتکار، ہر بینا، ہر نابینا، ہر صحت مند، ہر بیمار، ہر معذور، ہر غیر معذور، سب کے ذمے یہ ذمہ داری لگا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اپنی محنت بنائے، آپ کی فکر کو اپنی فکر بنائے، آپ کی بے چینی کو اپنی بے چینی بنائے، آپ کے غم کڑن درد کو اپنا غم کڑن درد بنائے، ساری انسانیت کے ہدایت کی فکر میں دن رات ایک کر دیں، ساری انسانیت کو دوزخ سے بچانے کے لیے، ساری انسانیت کو جنت کے راستے پہ چلانے کے لیے، جنت میں پہنچانے کے لیے محنت کوشش میں لگنا، فکر کرنا، غم کرنا، بے چین ہونا، یہ اس امت کے ہر فرد کے ذمے ہے۔ اس دن سے جس دن یہ پیدا ہوا ہے، ذمہ داری کی ادائیگی بلوغت کے بعد سے ہے، لیکن ذمہ داری پیدا ہوتے ہی آ گئی۔ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا یا جو اسلام لے آیا، اس کے ذمے حضور والی محنت آ گئی، اللہ کی طرف سے آ گئی۔ اس محنت کے کرنے کی مختلف شکلیں ہوں، اس لیے ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، خصوصاً عورتوں کے بیان میں، مستورات میں جب بیان کرتے تھے کہ ایک بوڑھی عورت اپاہج ہے، بوڑھی ہے، چل نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، اٹھ نہیں سکتی، بیٹھ نہیں سکتی، کوئی حرکت نہیں کر سکتی، لیکن اپنے بستر پر لیٹے لیٹے سارے عالم کی ہدایت کی فکر کر سکتی ہے، دماغ کام کر رہا، باقی کوئی جسم کا کوئی حصہ کام نہیں کر رہا۔ اب وہ اپنے بستر پہ لیٹے لیٹے سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کی فکر کر رہی ہے، کر کچھ نہیں سکتی، صرف فکر کر رہی ہے۔ ایسا فرماتے تھے، ساری دنیا کے انسانوں کی हिदायत के वक़दर अल्लाह इसको अजर और सवाब देंगे, हिदायत जिसको अल्लाह चाहेंगे देंगे, लेकिन इसको मिलेगा पूरा पूरा उस फिक्र की वजह से। मुझसे आई साहब ने फरमाया हिंदुस्तान के दो बड़े उलमा उनको फोन करने के लिए और कहा कि उन दोनों से खुद बात किया आई साहब ने कि हिंदुस्तान के जितने मदरसे हैं उन तमाम मदरसे के तलबा और असाज़ा से ये कहो कि जब जब पढ़ने पढ़ाने में लगे सारे आलम की नियत कर लिया करें। फरमाया कि इनके इस पढ़ने पढ़ाने में सारे आलम की नियत कर रहे हैं, जा एक कदम भी नहीं रहे, लेकिन पढ़ने पढ़ाने के वक्त में सारे आलम की नियत कर ली तो सारे आलम की नियत करने की वजह से सारे आलम के ऊपर इनके पढ़ने पढ़ाने के एक एक हर्फ का असर सारे आलम पे पड़ेगा। और चूं-चूं ये असर बढ़ता जाएगा लोगों में हिदायत के कबूल करने की इस्तेदाद पैदा हो, और जितनी इस्तेदाद बढ़ती चली जाएगी लोग हिदायत की तरफ भागे चले आएंगे, हिदायत को कबूल करते चले, मुल्क के मुल्क कौम की कौमें हिदायत की तरफ आएंगी, इस्लाम की तरफ आएंगी। जिनके हुक्मरान जिनके बड़े उन्हें रोकना चाहेंगे तो वो रोक नहीं सकेंगे, और कौमों की कौमें मुल्क के मुल्क इस्लाम कबूल करती चली जाएगी। ये जिम्मेदारी है उम्मत मुहम्मदिया में होने के एतबार से, इस उम्मत के बच्चे बच्चे पे इस मेहनत की जिम्मेदारी है। इसके लिए बेचैन रहना, हर वक्त गम और फिक्र में रहना, चलते फिरते उठते बैठते जिंदगी के जिस शोबे में हो, मां यूसुफ साहब रहमतुल्लाह फरमाया तबलीग का मकसद अपने अपने मशागिल से छुड़ाना नहीं है। ये मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज हैं लिखे हुए कि तबलीग का मकसद लोगों को उनके मशागिल से उनके काम काज से छुड़ाना नहीं है। तबलीग का मकसद जिंदगी गुजारने की जो हमने तरतीब बिगाड़ ली है, जैसे अल्लाह रसूल चाहते थे जिंदगी गुजारना, उस जिंदगी गुजारने की तरतीब बदलने की वजह से जो यकीन और अमल में बिगाड़ पैदा हुआ है उसकी दुरुस्तगी कर रहे हैं। यकीन और अमल की दुरुस्तगी, चाहे जिंदगी के किसी शोबे में रहे, चाहे तिजारत में रहे, ज़राअत में रहे, तालीम और ताल्लुम में रहे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में रहे, पढ़ने पढ़ाने में रहे, दीनी उलूम में लगे, असरी उलूम में लगे, सियासत में लगे, अदालत में लगे, हुकूमत में रहे, वजारत में रहे, सदारत में रहे, लेकिन जो अल्लाह रसूल जिंदगी गुजारने की तरतीब बताते हैं उस तरतीब को हमने बिगाड़ दिया, उस तरतीब को छोड़ दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि हमारा यकीन भी बिगड़ गया, हमारे अमल भी बिगड़ गए। अपनी जिंदगी की तरतीब को वैसे बनाना जैसे अल्लाह चाहते हैं, चाहे उसी शोबे जिंदगी में रहे, अपनी जिंदगी की तरतीब को वैसे करना जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके दिखा के गए, तो फिर हमारा यकीन भी दुरुस्त हो, हमारा अमल भी दुरुस्त हो। यकीन और अमल की दुरुस्तगी, यह है इस तबलीग की मेहनत से मकसूद, अपने अपने शोबे जिंदगी में रहते हुए। इसलिए फरमाया मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कि तमाम मसाइल इंसानिया, सारी दुनिया के मुसलमान नहीं कहा, सारी दुनिया के इंसानों के मसाइल, हाँ वो इनफरादी मसाइल है या इज्तमाई मसाइल, सारी दुनिया के इंसानों के इज्तमाई मसाइल, इनफरादी मसाइल, वक्ती मसाइल या दायमी मसाइल, अबदी वक्ती मसाइल या अबदी मसाइल, वक्ती मसाइल मौत तक, अबदी मसाइल मौत के बाद, तमाम दुनिया के इंसानों के तमाम मसाइल, हाँ वो इनफरादी है, इज्तमाई है, वक्ती है, अबदी, उस सब का हल अल्लाह जल्ले जलालहु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बाने अथर से निकाली हुई दुआओं में रखी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 24 घंटे के एतबार से जितनी दुआएं बतलाई हैं, उन तमाम दुआओं में तमाम इंसानों के اجتماعی انفرادی وقتی ابدی مسائل کا حل موجود ہے. لیکن کب؟ تب جب ان دعاؤں کا یقین ہو. حضور نے کیا فرمایا؟ صبح آیت الکرسی پڑھ لو شام تک تمہاری حفاظت ہو گئی. ہوگی نہیں, ہو گئی. پڑھتے ہی آیت الکرسی پڑھتے ہی دل کا یقین یہ بنے کہ میری حفاظت ہو گئی. ہوگی نہیں, ہو گئی. سچوں کے سچے صادق المصدوق نے کہا. حضور نے فرمایا شام کو آیت الکرسی پڑھو صبح تک تمہاری حفاظت ہو گئی. حفاظت کا فیصلہ ہو گیا, اب کوئی میرا بال بھی کا نہیں کر سکتا. یہ یقین ہو, یہ یقین ہو. ہر ہر دعا پہ جو حضور نے فرمایا یہ دعا پڑھو گے اس پہ یہ ہوگا, اس کا یقین. پہلی بات, دعاؤں سے نفع کب ملے گا؟ جب ان دعاؤں کا یقین ہو. سب سے پہلے ان دعاؤں کا یقین ہو دل میں, پہلی بات. دوسری بات, پھر جب یقین ہے تو یقین ہونے کے بعد آپ اس کو سیکھیں. یقین ہے, یہاں سے سن لیا نا یقین. آیت الکرسی یاد نہیں ہے لیکن سنا آیت الکرسی پڑھنے سے حفاظت ہو گئی, تو اب آیت الکرسی کو سیکھے. جس دعا کا پتا چلا کہ اس دعا پہ یہ ہے, اس کا یقین کیا, اب اس کو سیکھے, اب اس دعا کو سیکھے. دوسری بات ہوگی. تیسری بات, پھر اس کو سکھائے. کیونکہ امت محمدیہ ہے, صرف اپنے لیے تو نہیں کرنا. سارے انسانی مسائل کا حل کس میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعاؤں میں. لیکن اس سے نفع کب ہوگا؟ پہلے نمبر پر ان دعاؤں کا یقین, دوسرے نمبر پر اس کو سیکھنا, تیسرے نمبر پر اوروں کو سکھانا, اور چوتھے نمبر پہ اس کو اپنا معمول بنانا, اس کو اپنا معمول بنانا. ہم کہتے ہیں ایک دفعہ پڑھ لو جھٹ منگنی پٹ گیا, بس پڑھ لو اور کام ہو جائے. نہیں, اس کو معمول, جب تک اس کا اثر ظاہر نہ ہو جائے, اس کا مطلب یقین کی کمزوری ہے, اس وقت تک پڑھتے رہنا. آئی صاحب نے سنایا مجھے کہ حاجی عبدالوہاب صاحب نے کہ تھانہ بھون مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں کنواں تھا, اس کا پانی کھارا ہوا کرتا, کھارا پانی, نمکین شوری نہ. حضرت وہ پانی پیتے تھے اور دعا پڑھتے تھے, وہ جو کتابوں میں حدیثوں میں آتا میٹھے پانی کی دعا, الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا عذادا بذنوبنا. یہ دعا پڑھتے تھے, الحمدللہ, ساری تعریف اللہ کی ہے جس نے اپنی رحمت سے ٹھنڈا میٹھا پانی پلایا. حالانکہ ٹھنڈا میٹھا کہا ہے, تو نمکین شوریلا پانی ہے. اور دعا یہ کہہ رہے ہیں, اللہ ساری تعریف تیری کہ ٹھنڈا میٹھا پانی دیا تو, اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے کھارا اور نمکین پانی نہیں بنایا, شوریلا پانی نہیں بنایا. حالانکہ ہے شوریلا. کس نیت سے پڑھ رہے ہیں؟ کہ حضور کی دعا ہے میٹھے پانی کے لیے, کہ ہمارا پانی بھی میٹھا ہو جائے. ایسا فرماتے ہیں 12 سال تک حضرت تھانوی یہ دعا مانگتے رہے, 12 سال کے بعد کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا. لیکن چھوڑا نہیں, ہم 2 دفعہ مانگ کے چھوڑ دیتے ہیں, مسئلہ ہمارا یہ ہے. 3 دفعہ مانگ کے چھوڑ دیتے ہیں, کھولیں یا نہ کھولیں در تیری ہے کیوں اس پر نظر, تو تو بس اپنا کام کر, یعنی کھٹکھٹائے جا. ہمارا کام تو کھٹکھٹانا ہے, مانگتے رہنا. جب اس در کے سوا کوئی در نہیں تو جائیں کہاں, کس سے مانگے؟ جب ہم اس کے بندے وہ آقا, اور اس کے سوا کوئی در نہیں, کوئی دینے والا نہیں, کوئی کرنے والا نہیں, تو جو حضور نے اعمال بتلائے, دعائیں بتلائیں, اس پر پابندی, معمول بنانا. لیکن ساتھ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دعائیں قبول کب ہوتی ہیں, یہ دعائیں قبول کب ہوتی ہیں؟ جب ہم اپنی زندگی کے جن جن شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں ان تمام شعبوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کر کے اور اس کو چالو کریں گے, تب یہ دعائیں قبول ہوں. اس کے لیے یہ محنت, یہ ساری بھاگ دوڑ اس لیے ہے کہ وہ جو حضور کی دعائیں ہیں وہ ہمارے کام آ جائیں. وہ کام کب آئیں گی؟ کہ جن جن شعبہ زندگی سے ہمارا تعلق ہے उन तमाम शोबे जिंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या क्या तरीके हैं उसको चालू करना है, और ये तरीके हमें मालूम नहीं हो सकेंगे जब तक हम अपने उलमाए किराम से जुड़े नहीं रहे। हर बात अपने उलमा से पूछ पूछ कर चलेंगे, मेरा ताल्लुक इस शोबे से है, इससे मुताल्लिक अल्लाह का हुक्म क्या है, नबी का तरीका क्या है आप बतला दें, और फिर उसको जिंदा करने की कोशिश मेहनत में लग जाएंगे। जितने मेहनत कोशिश मुकम्मल करने के बाद दुआ नहीं कबूल, बल्कि मेहनत कोशिश शुरू करते ही दुआ कबूल होनी शुरू हो जाए, मेहनत कोशिश आखिर तक पहुंचे उसके बाद दुआ कबूल होगी ऐसी बात नहीं है, मेहनत कोशिश पे कदम रखा ही है और दुआ मांगनी शुरू की दुआएं कबूल होनी शुरू हो जाएगी, करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये दो जिम्मेदारी हुई, इंसान होने के नाते से अपने आप को हर वक्त अल्लाह का बंदा समझकर जिंदगी गुजारना, उम्मते मोहम्मदिया में होने के नाते से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत को अपनी मेहनत बनाकर लेकर चलेंगे, इस पर अपने आप को तैयार करना। अगर इन दोनों जिम्मेदारियों को हम लेकर चलेंगे और इससे मुताल्लिका जितने आमाल इसको हम करेंगे तो फिर अल्लाह हमें क्या इनाम देंगे। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लदीना आमनु हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ए ईमान वालो, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह हमें यहाँ बैठाया हुआ है कि ईमान वालों में हमारा शुमार हो रहा है। जो बाहर है वहां भी बहुत है, ये नहीं है कि जो नहीं आए वो ईमान वाले नहीं है। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, ए ईमान वालो तुम्हें ऐसी तिजारत बतलाए, तिजारत कारोबार सौदागरी जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से निजात दे दे। आगे अल्लाह खुद ही बतला रहे हैं, तुमिनून बिल्लाही व रसूली, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आओ। अजीब बात है, अभी तो अल्लाह खुद ही कह रहे थे ईमान वालो, अल्लाह ने पहले कहा ना है ईमान वालो, तो अल्लाह ने तो खुद गवाही दे दी कि हम ईमान वाले हैं, फिर कह रहे अल्लाह रसूल पर ईमान ले आओ। ईमान वाले तो हम हैं, लेकिन वो ईमान, ईमान का जो कमाल का दर्जा है वो अभी कहां है, वो अभी कहां है। इसलिए क्या फरमा रहे हैं, वो तिजारत क्या है कि कमाले ईमान पे पहुंच जाओ। कमाले ईमान पे कौन पहुंचता है, जो अपने आप को 24 घंटे अब्दियत में लेकर चलता है कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, पहली जिम्मेदारी जो पूरा करता है वो कमाले ईमान को पहुंचता है। जो हर लम्हा हर घड़ी निगाह अपने आका की तरफ किए रखता है, अब क्या हुक्म मिला, अब क्या हुक्म आया, अब क्या तरीका नबी का, अब क्या है, सोते क्या, जागते क्या, खाते क्या, पीते क्या, कारोबार में जाते क्या है, बाजार में जाते क्या है, हर लम्हे अल्लाह का हुक्म अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखकर चल रहा है, ये ईमान में कमाल की तरफ बढ़ता चला जा। अल्लाह के वादे और वहीद पर यकीन कर लेना, अल्लाह के रसूल के वादे और वहीद पर यकीन कर लेना, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने वादे और वहीद किए हैं, जो अमल पर बतलाया है ये अमल करोगे ये नफा, ये अमल करोगे ये नुकसान, उसका कामिल यकीन पैदा हो जाना, ये है ईमान कमाल का, ये ईमान मतलू। وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنی مال کے ساتھ جہاد کرو، دین کی سربلندی کے لیے محنت کوشش کرو، محنت کوشش کرتے ہوئے اگر دشمنوں سے ٹکراؤ ہو جائے اور وقت آ گیا جان کی بازی لگانے کا تو جان کی بازی بھی لگا دو، جان بھی قربان کر دو، اللہ کا نام دنیا میں زندہ ہوگا یا میں زندہ رہوں گا، کلمت اللہ ہی العلیا، اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہوگا، اللہ کا دین بھیجا ہوا سب سے اونچا، اس کے لیے میری جان جاتی ہے تو جائے، میرا مال خرچ ہوتا ہے تو ہو، میری عزت لپتی ہے لپ جائے، میری صلاحیت اس پہ خرچ ہو جائے، میری استعداد اس پہ لگے لگ جائے، اپنا अपना सब कुछ अल्लाह के दीन की सरबुलंदी और सरसब्जी के लिए लगा देंगे, जान भी लगाएंगे, माल भी लगाएंगे, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ इस पे खर्च करेंगे। यह है फरमाया, अगर जर्रा भी तुम्हारे पास इल्म है तो जान लो सबसे बढ़िया तिजारत ये है, इससे बढ़िया तिजारत कोई नहीं। ये दोनों जिम्मेदारियों को जमा कर क्या मिलेगा, इस तिजारत में क्या मिलेगा, यक़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, सारे गुनाह माफ, और ऐसे बाहों में अल्लाह दाखिल करेंगे जिसके नीचे नहरें जारी हैं, वह मसाकिन तय्यबा फी जन्नत आदन, और जन्नत आदन में बेहतरीन रहने का ठिकाना अल्लाह अता फरमाएंगे। हज़रत इमरान इब्न हुसैन और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह व मसाकिन तय्यबा फी जन्नत आदन क्या चीज है। हुज़ूर ने फरमाया क़स्र मिन लुलुआ, मोती का एक महल है, वफेदाल कसर सबून अदार याकूत अतिल हमरा, मोती के उस महल में 70 सुरख याकूत के घर है। क्या छोटे छोटे घर के चक्कर में एक दूसरे के जान के दर पे हुए पड़े, 70 घर सुरख याकूत के, वफी कुल्ली दार इन सबून अबैतन मिन जमरत इल खबरा, हर हर घर में 70 सबज जमरद के कमरे हैं, 10x10 के कमरे नहीं, ऐसे कमरे। फरमाया फी कुल्ली बैतिन सबउन सरीरन, ऐसे कमरे हैं कि हर हर कमरे में 70 दरख्त बिछे हुए हैं, वाला कुल्ली सरीरन सबउन फिराशन मिन कुल्ली लौन, हर हर तख्त पर 70 मुख्तलिफ रंगों के बिछौने बिछे हुए हैं, वाला कुल्ली फिराशन ज़ौजतुन मिन अल-हूर अल-ईन, हर हर बिछौने पे हूर अल-ईन में से बीवियां बैठी। क्या अपनी इन बीवियों के चक्कर में उनको बुलाया। एक और रिवायत में हुजूर ने फरमाया लवित तलात में असमहा फी लैलतिन मुज़लिमतिन लादातिद दुनिया अला मन फीहा, अगर सख्त अंधेरी तारीख रात में जन्नत की औरतों में से एक औरत अपने कलाई के कोने को जाहिर कर दे तो दुनिया और जो कुछ दुनिया में उसको रोशन कर। और एक जगह फरमाया लौ अन्ना इमरातन لو ان امراه من اهل الجنه وسقط في صبات ابحر لكانت تلك الابحر احلى من العسل, अगर एक औरत, एक तो नहीं कहा सारी औरतें नहीं, जन्नत की औरतों में से एक औरत दुनिया के सातों समुंदर में अगर अपना थूक डाल दे तो सातों के सातों समुंदर शहद से ज्यादा मीठे हो जाते। ऐसी बीवियां इंतजार कर रही, लेकिन कमरा भी तंग नहीं हुआ। फरमाया फी कुल्ली बैतिन सबउन माइदा, हर हर कमरे में 70 दस्तरखान भी लगे हुए हैं, छोटे छोटे दस्तरखान नहीं है, अला कुल्ली माइदतिन सबउन लौन मिन अत्ताम, हर दस्तरखान पे 70 मुख्तलिफ किस्म के खाने चुने हुए हैं। ये नहीं है कि दो दस्तरखान भी एक किस्म के खाने हैं, यहां बिरयानी है तो उधर भी बिरयानी, अभी खाना खाना है ना हम लोगों, जल्दी छोड़ देते हैं। नहीं खाना खा कर आए, दो खाना खा के छुट्टी हो जाएगी, वहां एक कमरे में 70 खाने हैं, एक दस्तरखान पे 70, दूसरे पर दूसरे 70 है, इधर फिरनी है तो उधर नहीं है, इधर कोरमा है तो उधर कोरमा नहीं है, उधर कुछ और है। फी कुल्ली बैतिन सबउन वसीफन वसीफा, हर हर कमरे में 70 नौ उम्र खादिम और खादिमाएं भी मौजूद है। सब बैठे सोच रहे हैं 5-5.5 फुट का तो कद है, इतना कुछ करेंगे क्या भाई, इतना खाना तो जाया हो जाएगा, फ्रिज भी इतने बड़े बड़े रखने पड़ेंगे, फिर तो जन्नत में फ्रिज की क्या जरूरत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था, अल्लाह को भी पता हो ये सोच रहे होंगे, हुजूर ने क्या फरमाया वह युअतल मुअमिनु मिनल कुव्वति मा याति अला ज़ालिका कुल्लिहि अजमा, ईमान वाले को वो ताकत वो कुव्वत वो सलाहियत दी जाएगी कि वो इन तमाम चीजों को इस्तेमाल करेगा। ये 5 फुट वाला जिस्म नहीं रहेगा, तूल आदम अलैहिस्सलाम 60 नज़रा, आदम अलैहिस्सलाम का कद हो साथ आ, हमारा हाथ का साथ नहीं, आदम अलैहि सलाम के हाथ का साथ। अल्लाह ने क्या फरमाया, दोनों जिम्मेदारियों को लेकर चलते रहे, अब्द बनकर रहे, हुजूर के मेहनत को अपनी मेहनत बनाकर, काम को अपना काम बनाकर चलते रहे, तो अल्लाह की तरफ से गुनाहों की बख्शिश का ऐलान और ऐसे जन्नत बागात में दाखला, ऐसे ठिकाने का मिलना, क्या फरमाया, ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये अजीम कामयाबी है, यह है कामयाबी, कामयाबी नहीं अजीम कामयाबी है। वो खरा दूसरी बात, तो हे पूरा तुम्हें महबूब है, अल्लाह को नहीं है, अल्लाह नहीं कह रहे कि मुझे, कह रहे तुम पसंद करते हो, मेरे बंदो तुम्हें अच्छी लगती है। अमीर साहब बात तो आपने बड़ी अच्छी की, बड़ा मजा आया, बड़ा दर्द किया, लेकिन यहाँ भी तो कुछ होना चाहिए ना, थोड़ा दाल रोटी, कोई गाड़ी माड़ी, कोई घर शहर, कोई बेगम शेगम सबके साथ कुछ लगा होता ना, गाड़ी के साथ माड़ी, बेगम के साथ शेगम, कुछ यहाँ दुनिया में कुछ होना चाहिए ना, कहते हैं नहीं कहते। तो अल्लाह को भी पता था कि ये कहेंगे, तो अल्लाह ने कहा दूसरी बात वो जो तुम्हें पसंद है, यानी यहाँ पे भी कुछ हो, तो अल्लाह ने क्या फरमाया, नसर मिन अल्लाह व फतहुन करीब, अल्लाह की मदद आएगी और फतह यू, काफिर कमाएंगे और मुसलमान खाएंगे। साहबा ने क्या फरमाया, अभी तो हम सोच भी नहीं सकते ईमान का जो हमारा दर्जा है, जब ईमान के उस सदा पे पहुंचेंगे तो काफिर कमाएंगे मुसलमान खाएंगे, अल्लाह की मदद। साहबा क्या फरमाते, हुवो कल एबल, इतनी देर में हम मैदान मार लेते थे कि जितनी देर में ऊंटनी के दूध के बीच का वक्फा होता था, पर हजार हा बरस का जमा खजाना साहबा यूं चुटकियों में ले लिए। उबशरिल मोमिनीन, ईमान वालों को खुशखबरी दे दे, अजीम कामयाबी नहीं, ईमान वालों को खुशखबरी दे दे, दुनिया भी तुम्हारी है, आखरत भी तुम्हारी है, ना दुनिया तुमसे कोई छीन सकता है, ना आखरत तुमसे कोई ले सकता है। जर्रा ईमान पे वो जर्रा ईमान जिसकी खबर अल्लाह के सिवा किसी को नहीं, जिस जर्रा ईमान की वजह से वो जहन्नम में सजा काट कर सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, तो ऐसी कामयाबी मिलेगी कि इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत अल्लाह उसे अता करेगा। ये तो जर्रा ईमान वाले पे है, और जो बगैर हिसाब किताब के किया उसके क्या कहने, क्या मजे उस। मेरे भाई और बुजुर्गो, क्यों दुनिया के धोखे में पड़े हुए हैं, अद्दुनियादार मल्ला दार अला, ये उसका घर है जिसका आखरत में कोई घर, वो माल मल्ला माल अला, ये दुनिया उसका माल असबाब है जिसका वहां कुछ नहीं, वो यजमाउ मल्ला अक्ल अला, और इसको जमा वो करता है जो फारिग है, यहाँ ऊपर के हिस्से से फारिग है, जिसके पास कोई अकल नहीं वो इसको जमा करने के दर पे हो। हुजूर फरमा रहे दुनिया के जमा करने में वो लगा हुआ है जो अकल से फारिग है, जिसके पास कोई अकल, इसलिए हम नियत करें, नियत करें। बकौल हमारे हाई साहब के कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाई साहब मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनाते थे कि मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी दुआ में ये दुआ मांगते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत को अपनी मेहनत ना बनाकर हमने वो जुर्म अजीम किया है कि जिस जुर्म अजीम का अंजाम ये हुआ कि सारी दुनिया जराइम और मासी से भर गए, सारी दुनिया में जितने जराइम हो रहे हैं, जितने मासी हो रहे हैं, उन सारे जराइम और मासी का मुजरिम मैं हूं, हम नहीं, मैं, हम में से हर एक सोचे कि मैंने हुजूर के काम को कितना दिया और अपनी चाहतों आरजुओं को पूरा करने में कितना लगे, अपनी ख्वाहिशात की तकमील में कितना गए और हुजूर की मेहनत के लिए कितना किया, हुजूर की मेहनत को अपनी मेहनत ना बनाकर वो जुर्म अजीम जिसके हम मुर्तकिब हुए, जिसका नतीजा सारी दुनिया को जराइम से भरना है, अल्लाह तू हमें माफ कर दे। हम सब यहां बैठे बैठे अभी इसी वक्त दिल दिल में अल्लाह से माफी मांगे, इकरार करते हुए, एतराफ करते हुए कि वाकई मैं मुजरिम हूँ, मैंने अपने घर को देखा, अपने दर को, अपने सामान को देखा, अपने कारोबार को देखा, अपने मुलाजमत को देखा, अपने ओहदे मनसब को देखा, अपने भी बच्चों की हाजतों को देखा, नहीं देखा तो सरकार के इस दीन के मेहनत को नहीं देखा और ये दीन दुनिया में मिटता रहा, मुसलमान कुफर की तरफ भागते रहे और काफिर दोज़ख में गिरते रहे और मजे मजे की जिंदगी में मैं पड़ा रहा। है अल्लाह वाकई मुझे अपने जुर्म का एतराफ है, इकरार है, मैं अपने जुर्म का इकरार एतराफ करके आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ करो। हदीस में आता है एक इस्तग़फ़ार तीन दफा अगर कोई पढ़ ले समुन्दर के झाग के बराबर भी अगर उसका गुनाह है तो अल्लाह उसे माफ कर देते हैं। हमारे आयशा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हम अपनी गलतियां कोताहियां अपनी बदामालियों पे इस्तग़फ़ार करते हैं, इस पर भी करना चाहिए, लेकिन हुजूर के काम को काम नहीं बनाया इस पर इस्तग़फ़ार नहीं करते। हुजूर के काम को काम न बनाना ये जो जुर्म है इसको भी सामने रखकर इस्तग़फ़ार किया करे। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। तीन दफा पढ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه। इस नियत से अल्लाह ये पढ़ा कि हमारे वो गुनाह माफ कर, पूरी उम्मत के गुनाह माफ कर। और इलियास साहब रहमतुल्लाह ने दुआ मांगा करते थे, ऐसा फरमाते दुआ मांगते थे, ऐ अल्लाह उम्मत के जिस फर्द से जहां जो गलती हुई जिसकी वजह से ये उम्मत इस मुबारक मेहनत से महरूम हो गई, ऐ अल्लाह उस पूरी उम्मत की तरफ से हम माफी मांगते हैं, पूरी उम्मत को माफ कर। मौलाना इलियास साहब की मुस्तकिल दुआ थी, हम पूरी उम्मत की तरफ से माफी मांगते, ऐ अल्लाह पूरी उम्मत की तरफ से माफी चाहते। और नियत करें, आजम करें आज के इस तौबा के बाद कि इस काम को अपना काम बनाएंगे, इस मेहनत को अपनी मेहनत बनाएंगे, अपनी सलाहियत इस्तेदाद ताकत कुव्वत को जान और माल को इस काम में सर्फ करेंगे, दीन दुनिया में जिंदा हो, अल्लाह का नाम ऊंचा हो, मेरी जान जाए, मेरा माल खर्च हो, कोई बात कर ली सबने नियत इंशाअल्लाह। अब जब नियत कर ली है तो इस नियत के एतबार से ये जो इस्तेमाल किए जाते हैं, ये इस्तेमाल जो किए जाते हैं ये हंगामी हालात पर किए जाते हैं। जब बेदीनी की आग भड़क उड़ रही हो, जब बेदीनी की आग भड़क रही हो तो फिर ऐसे इस्तेमाल हंगामी बुनियाद पर किए जाते हैं ताकि उन इस्तेमाल से हंगामी बुनियाद पर साल साल सात सात महीने चार चार महीने और चालीस चालीस दिन के लिए अल्लाह के रास्ते में फिर कर बेदीनी की इस आग को बुझाया जाए। तैयार है इंशाअल्लाह इसके लिए, यहीं से अल्लाह के रास्ते में जाएंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। अल्लाह लेकर जाते हैं, अपने जेब के बलबोते पे कोई नहीं जाता, अल्लाह से मांगेंगे। आज की रात है, आज की रात है, फिर कल की रात है, शब दरमियान रब मेहरबान, अल्लाह से मांगे और अल्लाह से मांग कर इसकी नियत करें कि इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे। अभी अभी जाना नहीं भाई, इसको बैठाओ भाई, ये बेचारा इतनी देर बैठा, थोड़ी देर बैठ जाओ, पहले तो तुम जा रहे थे, मैंने कहा जाओ तो गए नहीं, अब थोड़ी देर बैठ जाओ, और मेहरबानी तुम्हारी, पहले तो इसको कहा था ना कि जाओ, ये बैठ गया नहीं गया, बहुत मेहरबानी की इसकी वजह से, और भी सब जमकर बैठे रहे। अल्लाह आप सबको बहुत बहुत ऊंचा बदला दे इसका। जब इज्तमाही अमल में देखो, इज्तमाही अमल जब भी हो रहा हो, इज्तमाही अमल के आखिर में ऐलान होता है, ये जो घंटा डेढ़ दो बैठे हैं ना, इसका इनाम लेना, खाली हाथ चलेगा, इसका इनाम लिए, मैं क्या इतनी देर बैठे और कुछ भी नहीं मिला। बच्चे कहीं जाते तकरीब आखिर में कहते ना, श्रीनी मिला या नहीं भाई, मिठाई दो, तो अल्लाह भी इनाम देते हैं। हदीस में हुजूर ने फरमाया मजलिस के आखिर में ऐलान होता कुमो, अभी हम खुद उठ रहे हैं ना, नहीं ऐलान होगा उठो, तुम्हारे सारे गुनाहों को नेकियों से बदल दिया गया और जितने गुनाह थे उन सबको सारे गुनाह माफ और जितने गुनाह थे उन सबको नेकियों से बदल दिया। कुमो मगफूर लकुम, गुनाह भी माफ और सारे नेकियों से बदल गया। अब सिर्फ चंद मिनट में तश्कील तो इंशाअल्लाह करेंगे ये हजरा, लेकिन चंद मिनट तश्कील में लगता है, वो चंद मिनट शैतान हमें कहता बच्चू तू बैठा तो था घंटा डेढ़ घंटा, लेकिन तुझे खाली हाथ ले जाऊंगा, तेरे साथ कुछ जाएगा नहीं, वो दुश्मन घात में बैठा हुआ है, क्योंकि दावत जब तक चल रही होती भाग रहा होता है, जो ये दावत रुकती है करीब आता है तो अब वो उठाएगा, जो ही दावत रुकेगी बात खत्म होगी तश्कील की बात शुरू होगी सार एकदम से शैतान का चुरबुट अंदर घुसेगा और एक एक को उठाएगा। अब दाव पता चलेगा कौन शैतान के दाव में आता है और कौन रहमान के चक्के में रहता है, पता अब चलेगा हम कितने कच्चे हैं कितने पक्के हैं। शैतान हमें दाव पे फंसा लिया या नहीं फंसा। अब आला दर्जा क्या है, खुद भी बचना है अपने भाइयों को भी बचाना है, अपने जमातों में जाके कहते हैं ना सारे इंसानों को सारे इंसानों की भलाई चाहते हैं, अपने भाई की तो चाहिए नहीं, वो तो जा रहा था जूता उठाकर, उस बेचारे को जो मिलना था आखिर में मगफरत और नेकियों में बदलना गुनाहों का, वो तो अगर गुनाह नहीं है तो दर्जात की तरक्की, ना खुद जाएंगे ना किसी को, नहीं ये तो हल्की सी आवाज है इसका मतलब देंगे जाके, ना खुद जाएंगे ना किसी को जाने दे। अब पता चला मर्द हजरात है माशाल्लाह। अब हिम्मत हौसले के साथ पहले वो अहबाब खड़े हो जाए ज्यारत करा दे, इंशाअल्लाह तश्कीलें अभी बयानात होंगी तश्कीलें होंगी, जुमे के बाद का ये मुबारक घड़ी है, जुमे का दिन है, जो जो साल सात महीने पैरून के लिए नियत करके आए हैं या अब नियत इरादा बन गया है तफक्कुद कराएंगे, वो सारे जरा एक दफा खड़े हो जाए माशाल्लाह, एक दफा जल्दी जल्दी खड़े हो जाए, दो चार मिनट में तश्कील पूरी हो जाएगी। नाम लिखने वाला तो यहाँ उन्होंने पहले से कोई नहीं खड़ा किया, वो पहले से कह देंगे कि जी अपने अपने हलकों में तो जब खड़े होंगे बाकी आप
रमजान से भाई मोहम्मद रमजान साहब अल्लाह और फरमाए।
चले ये जितने जितने अहबाब हैं आप लोगों ने पहले भी लिखाया होगा, जिन्होंने नहीं लिखाया वो जहां ये अहबाब अभी बतलाएंगे बस अभी दो चार मिनट में सारी बात हो जाएगी, वहां जाकर अपना तफक्कुद करवा करेंगे ना इंशाल्लाह। पकड़ जकड़ की तो जरूरत है ही नहीं, अल्लाह के लिए करना है, कोई पकड़ेगा तो भी करेंगे नहीं पकड़ेगा तो भी करेंगे, बैठे माशाल्लाह। और जिन अहबाब का जिन हमारे भाइयों ने इस इज्तिमा से अंदरून साल, ओह हमारे आयशा रहमतुल्लाह अलैहा फरमाते थे कि वहां यूसुफ साहब फरमाते थे ये जो पैदल अंदर चलना है ना ये सारे बातिल नक्शे का तोड़ है, जितनी मादी कुवतें हैं मैं नाम नहीं लेना चाहता हथियारों की जितनी बड़ी सी बड़ी कुवत है उस सबको ये पैदल नकलो हरकत भस्म करके रख देती, ये जो पैदल जमाते चलती है हमारी अंदरून उसके लिए बदला है माशाल्लाह। हिम्मत करके कौन कौन जो जो है इस उससे जो तैयार है जो जमाते हैं अंदरून साल पैदल वाले अंदरून साल पैदल वाले माशाल्लाह, इधर से खड़े हुए इधर से नजर नहीं आ रहे तो इधर बस माशाल्लाह और माशाल्लाह अंदरून पैदल में वो बूढ़े भी जा सकते हैं जिनकी हिम्मत जवान। पिछले साल हमारे आपके डिफेंस के इलाके के लोग वो अंदरून पैदल जो हर वक्त गाड़ियों में रहते गाड़ियों से उतरते ही नहीं वो पैदल चल कर गए आपके कराची की जमात साल लगाकर, वो कैफियत बनती है। हमारे जो अरब मेहमान आते हैं जब वो उन जमातों की नुसरत करके आते हैं सिर्फ 10-15 दिन वो अपनी ईमानी कैफियत को कहां से कहां महसूस करते हैं, कहते जी ओहो वो तो अब ये जितने खड़े हुए हैं ना अंदरून पैदल वाले ये तय कर लें कि दुआ से पहले पहले एक एक साथी इस मजमे में से और तैयार करें कम से कम, ज्यादा और तैयार जितना हो जाए। हाँ भाई करेंगे ना इंशाल्लाह। जितने ये खड़े हुए अंदरून साल के लिए ये तय कर लें कि हम दुआ से पहले तक हिदायत दुआ वाले दिन के पहले तक कम से कम एक साथी मजमे में से और तैयार करें। दुगने हो जाएंगे इंशाल्लाह, दो हो जाएंगे तो और ज्यादा, एक तो करेंगे ही करेंगे, आगे जितना मिलता जाए जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा। तशरीफ रखे माशाल्लाह। और वो अहबाब जो इस इज्तिमा से 40 दिन और 4 महीने के लिए नकद अल्लाह के रास्ते में निर्णय किया है या इरादे कर लिया है, वो जरा सारे खड़े हो जाए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके लिए तो सबको तैयार होना चाहिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हिम्मत मर्दा मदद खुदा माशाल्लाह। और भाई पीछे वाले भी खड़े हो जाए, पीछे वाले देखो भाई ये है अल्लाह के रास्ते के पुजारी, अल्लाह के रास्ते में फिरेंगे, अल्लाह के नाम का डंका बजाएंगे, अल्लाह का नाम ऊंचा होगा और हमारे अल्लाह के यहाँ जिक्र होगा कि ये अल्लाह के रास्ते में फिरने वाले माशाल्लाह माशाल्लाह। और भी इधर से पीछे से और भी साथी खड़े हो जाए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई इतने से तो 1000 जमात नहीं बनेगी, 1000 जमात है, कितनी जमात है? 2000। अच्छा मैं तो 2000 जमातें देनी है, इतने से खड़े हो जाओ भाई, मेहरबानी आप लोगों की, खड़े हो जाओ भैया। जो खड़े हैं एक एक अपने साथ वाले को खड़ा करो ना, थोड़ा सा इशारा चाहिए, बस थोड़ा सा इशारा देखो माशाल्लाह, देखो माशाल्लाह खड़े हो रहे। अच्छा माशाल्लाह, वो उधर भी खड़े हैं। नहीं नहीं पिंडाल है, पिंडाल तो दूर तक है जहां नजर जा रही है माशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए और आसानी का मामला फरमाए। बस एक आखिरी बात करूंगा, तशरीफ रखें, एक आखिरी बात मुख्तसर से एक आखिरी बात ये सुनकर फिर जाना, फिर ये इंशाल्लाह ऐलान करेंगे नमाज के एतबार से। आखिरी एक आखिरी गुजारिश तशरीफ रखें, हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस मैदान में पड़े हुए हैं, घर का खाना सोना आराम छोड़कर यहाँ आए। दो रातें आएंगी, आज की रात आएगी वो हफ्ते की रात है और अगली रात आएगी वो इतवार की रात है। ये दो रात हर साथी कम अज कम आधा घंटा हमारा ये सारा मजमा जो यहाँ सामने है, जो नजर नहीं आ रहे, जो दूर है, सबके सब सबसे दरखास्त है, दस्त बस्ता दरखास्त है कि हम में से हर साथी तय कर ले कि आधा घंटा ऐसा निकालूंगा मैं इन दो शबों में, दो रातों में, जिस आधे घंटे में मेरे और मेरे अल्लाह के बीच में कोई नहीं होगा और अल्लाह से मुनाजात करें। मुनाजात क्या है? चुपके चुपके बात करें कि अल्लाह अब तो बहुत हो गया, 7 अरब से जायद इंसान है और लाखों इंसान रोजाना ईमान के बगैर दोज़ख में जा रहे हैं। अल्लाह तेरा कुंबा है, तेरे कुंबे के लिए तुझसे भीख मांगते। आंसू बहाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, सर सजदे में डाले हुए अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, अल्लाह को इस मजमे का गिड़गिड़ाना यकीनन पसंद आएगा और अल्लाह की रहमत जोश मारेगी और अल्लाह की रहमत उतरी सारी इंसानियत का भला हो जाए। मालूम नहीं किसका हाथ उठाना, किसका गिड़गिड़ाना, किसका तड़पना, किसका सिसकना अल्लाह को पसंद आ जाए, किस सफेद रीश का और किस जवान का और किस बच्चे का कि उसका वो रोना पसंद आया और हमारे जैसे लाखों करोड़ों इंसानों का भला हो। वो दर ऐसा है कि उस दर का सवाली खाली हाथ नहीं जाता, उस दर का भिखारी कभी महरूम नहीं होता। आधा घंटा घड़ी देखकर, वरना शैतान 5 मिनट को खींच के लंबा कर देगा, घड़ी देखकर मुसलसल मांगे अल्लाह सारी इंसानियत के दिलों के रुख को अपनी जाते आली की तरफ फेर दे, सारी इंसानियत को दोज़ख से बचा दे, उम्मते मुस्लिमा को इस मुबारक मेहनत के लिए खड़ा कर दे, अब तो हिदायत का फैसला कर ही दे। अल्लाह कब तक इंतजार करेंगे? हम तो गंदे हैं, हमारी मेहनत भी गंदी है, ہم مخلوق ہیں, ہماری محنت بھی مخلوق ہے. آپ کا ارادہ ہو جائے, سب کا کام بن جائے. اے اللہ, ہماری جیسی کیسی محنت ہے اسے قبول کر کے انسانیت کے ہدایت کا فیصلہ اب کری دے. چمٹ جائے اللہ, جیسے بچہ ماں سے چمٹ جاتا ہے نا, اماں دے 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 دے, ماں آخر دے ہی دیتی ہے, ایسے ہی اللہ سے چپتے رہیں, مانگتے رہیں, سر سجدے میں ڈالے, آنسو بہاتے ہوئے, روتے ہوئے, تڑپتے ہوئے, سچکتے ہوئے, اللہ کر دے ہدایت کا فیصلہ کر دے. مانگیں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے, ہم سب کے لیے آسانی کے ساتھ اس کام میں لگنے کی توفیق عطا.
جو بھائیوں نے جتنے وقت کا بھی ارادہ کیا ہے اللہ سب کے ارادوں کو قبول فرمائے. اب اپنے اپنے علاقے میں جا کر کے جو جماعتیں بن رہی ہیں اس میں اپنی اپنی ترتیب بنوا لیں اور فوری طور پر اسی وقت ہی بنا لیں, اور انشاءاللہ عصر کی نماز کی اذان 4:40 پر ہوگی اور نماز 5 ہوگی. ایک دوسرے کو تیار کرتے رہیں, استغفار توبہ میں لگیں اور سب سے توبہ کرائیں.